رات ایک کلاس چل رہا تھا 26 فروری 1968 کا. پہلے پیج کی مدھیانت میں بات چل رہی تھی. بابا نے پرشن اتری بنوائی تھی, پوچھنا چاہیے تم ستیو کے شیشٹاچاری ہو یا کلو کے بھرشٹاچاری ہو. ہر ایک اپنے سے پوچھے, کوئی بھی منشیا اپن کو شیشٹاچاری تو کہہ نہیں سکتے. کیونکہ ستیوگ تو ابھی ہے نہیں. پرشن بابا نے بہت اچھے اچھے نکالے تھے, پتا نہیں چھپائے ہیں یا نہیں چھپائے ہیں, کوئی کی بدھی میں بیٹھا ہوگا یا نہیں. کوئی کی بدھی میں آ جاتا ہے تو جھٹ کام کر لیتے ہیں, نہیں تو اپنی مت پر کچھ نہ کچھ بنائے دیتے ہیں. گولڈن ایج اور آئرن ایج ہیں تو ایک ہی نا, یا تو گولڈن ایج ہوگا یا تو آئرن ایج. ستیو کی ستو پردھان دنیا میں آدھ سناتن دیوی دیوتائیں ہی رہتے تھے, اور تو کوئی تھے نہیں. تم بچوں کو ہی باپ پھر سے دیوتا بناتے ہیں, اور دیوتائیں ہوتے ہیں ستیوگ میں, ہیں تو وہ بھی منشیہ پرنتو دیوی گن ہونے کے کارن اپنے کو پوجنے لائق ہیں. تمو پردھان منشیہ ستو پردھان دیوتاؤں کو پوجتے ہیں. تم پوتر پروتی مارگ والے تھے, اس لیے تم کو سمپورن نروکاری دیوتا کہا جاتا تھا. یہاں تو سمپورن نروکاری نہیں کہیں گے, اس لیے جو نمبر ون میں تھے انہوں کی مہمان گائی جاتی ہے. ستیو آج میں انہوں کا راجی تھا بنا, دوسری نمبر کی ڈائنیسٹی میں, تیسری نمبر کی ڈائنیسٹی میں, اور بعد والی ڈائنیسٹی میں جو نارائن ہوتے ہیں ان کی مہما شاستروں میں نہیں گائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اترتی کلا کے کم کلا کے نارائن ہیں. انہوں نے پوری پڑھائی باپ سے نہیں پڑھی, بیچ میں دھوکہ دے گئے, اس لیے ادھوری پڑھائی پڑھنے کے کارن کمزوری رہ جاتی ہے, اور وہ آتما دواپر یوگ سے دوسرے دھرم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو نمبر ون والوں کی مہما گائی جاتی ہے. کچھ چیتنیہ میں تھے, ابھی وہ نہیں ہے. تم بچے بیٹھ سمجھتے ہو, اور دوسروں کو سمجھاتے ہو. آؤ تو ہم آپ کو رادھے کرشن اتوا وشنو کے دو روپ لکشمی نارائن کے 84 جنموں کی کہانی سناتے ہیں. یہ بھی سمجھتے ہیں, تم سے گیان وہی لیں گے جو کل پہلے آئے ہوں گے. 26 فروری 1968 کی وانی کا دوسرا پیج. تمہارے پاس ٹاپکس تو بہت ہیں. جیسے آج شیو جینتی ہے تو تم کہیں گے ہم شیو کی بایوگرافی بتاتے ہیں. وہی منشیہ سرشتی کا بیج روپ ہے. ہم یہ سناویں گے کہ کیسے وہ سارے جھاڑ کے آج مدینت کا راز سمجھاتے ہیں. تم پتر گراویں گے, ڈھنڈورا پٹواویں گے, اخباروں میں ڈالیں گے, پرنتو ان سے بھی کوئی سمجھتے نہیں ہے. کتنے ٹاپکس نکلتے ہیں. چنمے آنند کا تو روز اخباروں میں پڑتا ہے, دکھاتے ہیں فلانے ادھیائے پر سمجھاویں گے. تم بھی کہیں گے آج ہم فلانے ٹاپک پر سمجھا دیں گے. ہم ان کے 84 جنموں کی کہانی بتاتے ہیں. پورے 84 جنم کون لیتے ہیں ये बात तो भगवान बगैर कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का सागर वो एक ही है। शिव जयंती भी मनाई जाती है तो जरूर यहां आते हैं, क्योंकि जयंती तो जरूर साकार की होगी, निराकार की तो जयंती हो न सके। जरूर ये आत्मा कोई शरीर में प्रवेश करती है, प्रकृति का आधार लेते हैं, कोई नया शरीर नहीं लेते हैं। खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में जबकि वानप्रस्थ अवस्था होती है तब ही मैं आता हूं, प्रवेश करता हूं। इनमें बैठ तुमको सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाता हूं, तो अभी हमको उनकी श्रीमत मिल रही है। जो श्रीमत हम आपको समझाते हैं, आगे चल के ढेर समझेंगे और रूहानी स्कूल खुलते जाएंगे, क्योंकि रूहानी बाप ही रूहों को समझाते हैं, रूह सुनती है, इसलिए घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझना, इस बात में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मां में कम याद करो, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं। श्री कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो 84 जन्म लेते हैं पतित बन जाते हैं। बाप भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, तो ये बहुत पतित हुआ ना, वो ही फिर पहले नंबर में पावन बनते हैं। मैं आता ही हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, और ये स्थापना की बातें तो वंडरफुल हैं। बाप जब आते हैं तो पहले पहले अपनी पहचान देते हैं, कब आते हैं 36 में, 36 में आए तो अपनी पहचान तो नहीं दी, पहचान दी होती तो ब्रह्मा को भी पता चलता। ये समझानी और कोई नहीं दे सकता सिवाय बाप के, कि बाप बाप के रूप में कब आते हैं और कब अपनी पहचान देते हैं। इसमें टाइम लगता है, जो भक्ति मार्ग वाले होंगे वो कोई इतना जल्दी नहीं समझते हैं, अभी तो तुम भी फील करते हो। पहले तो हमारी समझ में भी कुछ नहीं आता था, अभी कितनी पॉइंट्स निकलती रहती है। आईसीएस जब पढ़ते हैं तो फील करते हैं इससे पहली वाली किताब तो कोई काम की नहीं थी, अभी तुम भी ऐसे ही समझते हो। पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत फर्क हो जाता है, उस पढ़ाई से तो इतनी आमदनी नहीं होती थी। पिछाड़ी का जब ये पढ़ते हैं तो नौकरी मिलती है, और यहां पढ़ाई तो एक ही है। परंतु बाप कहते हैं आज मैं तुमको गुई गुई रमणी की बातें बताता हूं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, और फिर सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। बाप के बन जाते हैं फिर तो स्वर्ग के मालिक ठहरे, ये भी बाप समझाते हैं कि दो बाप हैं। पारलौकिक बाप तो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, तो 21 जन्मों की कितनी जबरदस्त कमाई है। एक तो तुम लायक बनते हो और पाई पैसे के एवज में तुम साहूकार बन जाते हो, बहुत ऊंच पद पाते हो, शिव बाबा से तुम सौगुणा करके लेते हो, بابا تو صراف بھی ہے، کوئی تو جھٹ کہہ دیتے ہیں بابا یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ کی امانت ہے، اور کوئی کے پاس رکھنے میں تو ڈر ہے کیونکہ سب بناش ہونے والا ہے، منسی تو بیاج پر جا کر رکھتے ہیں، آگے تو تین چار آنا بیاج ملتا تھا، ابھی دو روپیہ بھی لیتے ہیں، باپ سمجھاتے ہیں ابھی تو تم کہاں بھی رکھیں گے تو ختم ہو جائے گا، بینک میں رکھیں گے تو وہ بھی خلاص ہو جائے گی نا، ساری دنیا ہی خلاص ہونی ہے، کن کی دبی رہی دھول میں کن کی راجا کھائے، بینک آج کچھ بھی نہیں رہیں گے، جب اسٹیٹ ہی نہیں رہے گا تو اسٹیٹ بینک کا کاہے کی، باپ سمجھاتے ہیں یہ سب بناش ہو جانا، ابھی دیوی دیوتا دھرم کی استھاپنا ہو رہی ہے، کوئی کوئی مجھتے ہیں کہاں رکھیں، یہ تو سب ختم ہو جاوے گا، باپ کہتے ہیں آپ کام میں لگا دو، اچھا تم سروس میں لگاؤ، سینٹرز کا گھیراؤ ڈالو، سینٹرز کھولتے رہیں گے تو تمہارے کام میں آ جاوے گا، باقی تو سب ختم ہو جانا ہے، یہ سچی کمائی، ہاتھ ایسے بھرتو اور خالی ہوتا ہے نا، تم بچے تو بھرتو ہاتھ جا دیں گے، نمبر وار پرسارتھ انسار، ساری دنیا خالی ہاتھ جاوے گی، تم بھرتو ہاتھ جاویں گے، وہ تو ایشور ارتھ دان آدی کرتے ہیں، انڈائریکٹ کرتے ہیں، اور یہاں تو ڈائریکٹ ملتا ہے، گروہوں سے الپکال ایک جنم کے لیے ملتا ہے، اور یہاں ڈائریکٹ کرنے سے تم کو 21 جنموں کے لیے مل جاتا ہے، تو کتنا فرق ہو جاتا ہے، حالانکہ باپ تو کوئی سے لیتا نہیں ہے، باپ کہتے ہیں میں تو آیا ہی ہوں شریمت دینے کے لیے، باقی پیسے کا ہم کیا کروں گا، مول وطن میں پیسہ کہاں سے آیا، 26/2/68 کی وانی کا تیسرا پیج، میں تو ہوں ہی مول وطن کا باسی، تم ساکار سرشٹی میں آتے ہو تو تم ہی جمع کرتے ہو، پھر بھوشیہ 21 جنم کے لیے پاتے ہو، تم پوچھتے ہو کیا کریں، باپ کہیں گے گراؤ ڈالتے جاؤ، سینٹرز کھولو، کہتے ہیں سینٹر تو کھولیں، پرنتو براہمنی چاہیے، براہمنی تو ہے ہی نہیں، تیار ہو کر کے سروس میں نکلتی نہیں ہے، بندھن میں پھنس پڑتے ہیں، پڑھ کر کے پھر پڑھائی نہیں سکتے ہیں تو پھر ان کو ملے گا کیا، پرجا میں چلے جا بھی، یہاں تو تم ستیہ نارائن کی کتھا سناتے ہو، جس کی کتھا سناتے ہو وہی بنیں گے نا، کوئی پرجا کی کتھا تھوڑی سناتے ہو، پرجا بننے تو نہیں آئے ہو، راجا رانی کا پد پانا ہے تو سروس کرنی پڑے، جیتے جی مر کر کے باپ کا بننا ہے، پہلے جو مرے تھے انہوں سے پوچھو، اسی سمے سے کھٹکھٹ چلتی چلی آ رہی ہے، خیال نہیں کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک جواہری کے پچھاڑی اتنے سب کیسے جا سکتے، ایسا جادو تو کب دیکھا ہی نہیں، سمجھتے تھے ضرور کچھ شکتی ہے، پرنتو بس ایسے ہی کہتے رہتے تھے، परंतु कौन सी शक्ति है, शक्ति क्या चीज होती है, वो कुछ भी नहीं जानते। सर्वशक्तिवान तो एक बाप ही है, जिस बाप को राम भी कहा जाता है। कृष्ण का नाम कहीं क्यों नहीं लेते? कृष्ण तो सत्युग में भी बच्चे के रूप में जन्म लेगा और संगम में भी बेबी बुद्धि का पार्ट बजाता है, परंतु इस समय तो रावण राज्य है, राम का राज्य नहीं है। पांच विकारों की देखो कितनी शक्ति है, ये रावण मुट्ठा मरता ही नहीं है। बुत बना करके जलाते हैं, फिर जाते हैं लंका लूटने। अच्छा, एक बार लूटा फिर क्यों जाते हो? बाप ने तो समझाया ये सारी दुनिया लंका है, इस समय है ही रावण राज्य, सोना आदि कुछ भी है नहीं, तो लूटेंगे फिर क्या? सत्युग में देखो कितना सोना जवाहरात आदि थे, सब रावण ने लूट करके खलास कर दिए। बाप तो पूछते हैं, बताओ हमने तुमको कितनी राजाई दी, फिर वो कहां गमाई? वो सोने की महल आदि सब कहां गए? कितने हीरे जवाहरातों की महल थे, ये सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? तुम तो जानते हो, तुम कहेंगे इन्हें लक्ष्मी नारायण ने ही बनाया। अभी तुम राजभाग लेते हो, फिर भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर आदि बनावेंगे। परंतु ये तो सब निश्चय की बातें हैं, बनावेंगे तो जरूर राजा ही। नंबर वन जो साहूकार होगा वो ही बनावेंगे, और राजाएं तो बहुत होंगे, एक राजा को देख करके दूसरा भी बनाते होंगे। इतना बड़ा लश्कर आया तो कोई एक सोमनाथ मंदिर थोड़े ही लूटा होगा, शहर में भी तो घुसे होंगे। 1,00,000 लश्कर एक मंदिर में थोड़े ही लगेगा, तो ये सब खर्चा करते करते मंदिर बनाते बनाते शास्त्र आदि सुनते सुनते सुनाते पैसा ही खलास कर दिया, कितने गरीब बन पड़े। जब तक लोन ला लेवे तब तक रैयत को रोटी भी नहीं पहुंचा सकते, इतना अनाज आता है। तो ये कहते हैं देखो क्या हाल हुआ पड़ा है, खेल है हार और जीत का, फिर भी ऐसे ही चलेगा, ड्रामा का चक्र ऐसा फिटता रहता है। तुम समझते हो, तुम भी पहले बेसमझ थे, बाप ने अभी कितना समझदार बनाया, अभी तो तुम श्रीमत को हप करते जाओ। अर्थात श्रीमत पर चलो, पहली बात अपन को आत्म समझो और दूसरों को भाई भाई की दृष्टि से देखो, पवित्र बनो। शरीर का भान नहीं रखना चाहिए, अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो, और दूसरों को ज्ञान भी आत्मा समझ करके दो, आत्मा ही देखने की प्रैक्टिस करो। ये शिव जयंती भी तुम मनाते हो औरों को जगाने के लिए, तुम तो जगे हुए हो ही, ये गीत आदि भी तुमको नहीं सुनना है। तुम तो सभी कुछ जानते हो ना, मनुष्य तो जयंतियां मनाते रहते हैं झूठी, और तुम मनाते हो सच्ची। बोलो, जब शिव बाबा आया था तो अनेक धर्म का विनाश किया था और एक धर्म की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था, इसलिए बाबा ने समझाया था जहां तहां तुम लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, क्योंकि तुम ब्राह्मणों की ये अहम ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को फ्रेम करा करके घर के अंदर चाहे बाहर लगा दो, जो कोई भी आवे तो पूछे, तुम बोलो हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं अभी पावन बनो, पति तो पावनी कोई गंगा नहीं है, बाप को ही याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप कहते हैं पावन बनो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। कोई भी देहदारी याद ना आए, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देख करके सभी बहुत खुश होंगे। पहले तो इनको आकर के नमस्कार करेंगे, बोलो तुम बाप को याद करो तो ये पद पावेंगे। बल जयंती का दिन हो व न हो, परंतु ये चित्र तुम्हारा सदैव लगा रहे। जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनों के पास ये चित्र जरूर लगी रहे, तो समझेंगे ये तो देवताओं को मानने वाले हैं। पूछे तो सही कि ये क्या लगा हुआ है। बहुत करके ब्रह्मा के चित्र पर ही चढ़ते रहते हैं, तुम तो समझावेंगे। इस दुनिया में इतनी सृष्टि में प्रजा है तो प्रजापिता तो होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं। 26-268 की वाणी का चौथा पेज। तुम भी बच्चे हो, ब्रह्मा के बच्चे तो शिव बाबा के पुत्र ठहरे। औरों को समझाने के लिए तो रोज रोज चित्रों पर बिठाया जाता है, वो तो सब है जिस्मानी स्कूल, और ये रूहानी है। इन रूहानी के केंद्र तो बहुत होने चाहिए। सभी को लक्ष्य बताने के लिए तुम रोल खोलते हो, कोई को धंधा आदि तो कराना नहीं है, और सब धंधों में नुकसान होना है। इस धंधे से तो शिव बाबा के खजाने में जमा हो जाता है। कोई फिर ऐसे भी हैं जो अपनी आजीविका के लिए अपना ज्ञान बैठ सुनाते हैं, परंतु ये तो एक चोरी है। बाप को गुम कर देना और अपनी आजीविका बनाते रहना, ये एक चोरी ठगी शैतानी हुई ना। न उनका फायदा हो सकता न लेने वाले का फायदा हो सकता, क्योंकि शिव बाबा के भंडारे में तो जमा ही नहीं हुआ। शिव बाबा की अमानत खाने वाले महान पापात्मा बन पड़ते हैं। ऐसे भी बहुत निकलेंगे जो झूठी झूठी बातें बता करके सेंटर खोल करके बैठ जाएंगे। परंतु देने वाले तो देते हैं शिव बाबा को। अगर बीच में कोई दूसरा खा गया तो एकदम रसातल में चले जाएंगे। ये हुआ महापाप, और ये भी ड्रामा में पार्ट है। बच्चियां सितम भी कितना सहन करती है, कैसे भी करके बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। पाप आत्माएं बहुत मारपीट करके नगन करके बाहर निकाल लेती है, रिपोर्ट कर सकते हैं, परंतु इसमें बड़ी साफ दिल चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर मोह आ जावे, डायवोर्स दे करके फिर चाहे जहां चली जाए, परंतु इतनी हिम्मत चाहिए। हमको तो कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। अब यहां बाप के घर में डायवोर्स देने बगैर तो कोई को रख नहीं सकते हैं। बहुत खिचपिट हो जाती है, کماریوں کو بھی چٹھی بغیر رکھ نہیں سکتے، جن کو تیر لگ جاتا ہے وہ کماریاں بھی بڑی بہادری سے بولنے لگ پڑتی ہیں، بولتے ہیں ہم کو وکار نہیں دینا ہے، جا کر دوسری شادی کرے، گورنمنٹ تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، باہر کا کچھ بھی شو آدھی کرنا یہ تو دنیاوی باتیں ہیں، اپنا گیان تو ہے ہی گپت، ایک تو پوتر رہنا ہے اور باپ کو یاد کرنا ہے، آپ سمان بھی بنانا ہے، ستو پردھان بننے میں محنت تو بہت ہے، یہ باپ تو گارنٹی کرتے ہیں سب کو شانتی دھام لے جاؤں گا، پرنتو پھر نئی دنیا میں اونچ پد پانا اس کے لیے پرسارتھ کرنا پڑے، جو اچھی ریتی پڑھیں گے وہ سکھ دھام میں جاویں گے اور پہلے آویں گے، یہ گارنٹی ہے، باقی ہے سارا مدار پڑھائی پر، جتنا پڑھیں گے اتنا اونچ پد پاویں گے، واستو میں تمہاری تو روز جینتی ہے، یہ تو منشیوں کو جگانے کے لیے فنکشن آدھی کرتے ہیں، مانا یہاں تو باپ ہے، جب باپ ہی آیا ہوا ہے تو تم جلسہ کیا مناویں گے، تم کو تو باپ سے برسا لینے کی محنت کرنی ہے، پوتر بننا ہے، یہاں کی تو بات ہی نہیں آ رہی ہے، باپ کے بنے تو ورسا تو تمہارا ہو ہی جاتا ہے، پھر حسری مت پر چلنا، جگنا ہے اور جگانا ہے، یہی تمہارا دھندا ہے، صاحب کو راستہ بتانا، یہاں اس دنیا میں ان آنکھوں سے تم جو کچھ بھی دیکھتے ہو اس سب کا وناش ہونا ہے، ان سے کیا دن لگانی، ان سے دل ہٹتی جائے پرنتو اس میں ٹائم لگتا ہے، نئے مکان بنانے میں کب 6 ماس کب 12 ماس 14 ماس بھی لگ جاتے ہیں، پرانے میں جو رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ہم نئے محل میں جاویں گے تو پرانے سے دل ہٹتی جاویں گے، تو بدھی میں آنا چاہیے یہ تو سب ختم ہو جانے والا ہے، منشیوں کے ساتھ مکان آدھی بھی ختم ہو جائیں گے، آتما ایک شریر چھوڑ جا کر کے دوسرا شریر لے گی، اور ہم تو خوشی خوشی سے شریر چھوڑتے ہیں، دنیا ہائے ہائے کر کے شریر چھوڑے گی، یہ کیسے، جو پریکٹس پکی کر لیں گے آتمک استھتی کی ان کا شریر خوشی خوشی چھوٹے گا، پوتر بنتے بنتے شریر چھوٹ جائے گا، آتما اور شریر دونوں پوتر تھے، سو ابھی دونوں اپوتر ہیں، تم جانتے ہو ہم ہی یہ تھے، پھر یہ راجا ہی پد پانا یہ بڑی بات ہے، باپ سیمت تو بہت اچھی دیتے ہیں، کہتے بھی ہیں بابا مت تو بہت اچھی دیتے ہیں، پرنتو بندھن ہے، پرنتو یہ تو تمہارا بندھن ہے، چکتو کرنا ہے یکتی سے، بگن تو پڑیں گے، اتیاچار ہوں گے، یہ سب ہوگا، جو کل پہلے ہوا تھا سو پھر ضرور ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کلپ کلپ تم راج لیتے ہو، گنواتے ہو، تم شیو شکتی سینا ہو، اس سمے باپ کے بنے ہو، تمہارے میں شکتی آتی جاتی ہے، کئی بات کی شکتی آتی جاتی ہے، وکرم وناش کرنے کی شکتی، مارنے کی شکتی نہیں ہے، یاد کرنے سے ہی تمہارے وکرم وناش ہوں گے، تو تم وشو کے مالک بنانے والے کو بھولتے کیوں ہو، یہ پڑھائی تو بہت سہج ہے،
ओम शांति।
आज आप सबकी याद प्यारी के लिए जब मैं बाबा के पास पहुंची तो सदा के मुआफिक बाबा दादा दिल से ही मुस्कुराते हुए नैन मिलन मनाए और बाबा के नैनों में आज विशेष जैसे सारे वर्ल्ड की आत्माओं का गोला नजर आ रहा है और बाबा सर्व आत्माओं को एकदम रंग के रूप में वरदाता के रूप में सकाश दे। ऐसे ही बाबा को देखते हुए हमें भी अपना वैसा ही रूप अनुभव होने लगा। थोड़े टाइम के बाद बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ी तो आत्माओं को लोग गायब हो गया और बाबा ने मेरे को दूर से ही कहा आओ बच्ची आओ, तो हम भी नजदीक जाते जाते बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने मेरे साथ साथ दादी जी को और दादी जानी जी को भी मन किया। मैं उन तीनों को ऐसे बाहों का हाथ डालकर बहुत प्यार से ले सकती हूँ, इसलिए तीनों को ऐसी दृष्टि दी जो लगा जैसे लाइट हाउस की लाइट ऐसे ऐसे घूमती है। ऐसे बाबा के मस्तक से लाइट हाउस मुआफिक किरणें घूम रही थी और बाबा की लाइट पड़ने से हम तीनों के मस्तक पर वो किरणें चारों घूमी। फिर बाबा ने कहा बच्ची देखा बाबा और आप सब मेरी मुरब्बी बच्चे हैं, बाप समान बनने को उत्साह में रहने वाले बच्चे हैं। उनका वर्तमान समय काम क्या है वो बाबा आपको दिखाई दे। आज मनुष्य आत्माओं को क्या चाहिए, वर्तमान समय साधन तो बहुत है, जो उन साधनों से जो सुख शांति की प्राप्ति होनी चाहिए उसके बजाय अभी सब फील कर रहे हैं कि इन साधनों से सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती है। तो अभी सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे दिल की जो चाहना है वो उन साधनों से पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि उनकी भूख बढ़ती जाती है ऐसे आत्माओं की मेजॉरिटी आशाएं बढ़ती जाती कि कोई सुख चैन की अनुभूति कराने वाला मिले। चाहिए चाहिए का आवाज जैसे हर एक के दिल से निकल रहा। तो बाबा हम तीनों को दृष्टि दे रहे थे और ये महावाक्य बोल चाल। उस समय की बात बाबा ने कहा बच्ची तुम आज संदेश क्या लाई हो। मैंने कहा बाबा आज तो खास मैं दादी के निमित्त संदेश लाई है, दादी को सब याद कर रहे हैं। तो बाबा ने दादी को कहा कि आप सबको ज्यादा याद करती हो या दादी को ज्यादा याद करती हो, सभी आपको ज्यादा याद करते हैं। दादी ने कहा बाबा हमारे पास भी इन सभी के दिल की याद पहुंचती तो है और मैं भी दिल से याद करती हूँ कि बाबा आपने मेरे को विशेष संगम की सेवा की कलेक्टर से ही बुलाया है, तो मुझे संगम की सखियां साथी सेवा अभी तक भी निरंतर याद। तो मैंने कहा बाबा दादी इस समय किस रूप से सेवा कर रही है, सभी के मन में कोई चल तो उठता ही है दादी क्या कर रही है। तो बाबा ने कहा कि दादी का बहुत ही विचित्र पार्ट है। मैंने कहा बाबा आपने तो कहा था दादी गर्भ में है, तो गर्भ में रह करके क्या सेवा करेगी। तो बाबा ने कहा बच्ची को ये स्वतंत्रता है, बच्ची जब चाहे तब बाबा के पास इमर्ज हो सकती है, क्योंकि अभी कोई बंधन में बंधी नहीं है, अभी आत्मा स्वतंत्र है, आ जा सकती है। दादी ने कहा गुलजार बहन आपको पता है मेरा वतन में आने का टाइम फिक्स है, सेवा का टाइम भी फिक्स है। तो मैंने कहा दादी आपको कौन सा टाइम फिक्स है? कहा हमें तो मिले का ही टाइम फिक्स है। अमृत मिले बाबा अपने साथ मुझे इमर्ज करता है, जैसे बाबा अमृत मिले सकाल देता है, कभी विश्व का चक्कर लगाने जाता है, कभी साइंस वालों की तरफ, कभी ब्राह्मणों की तरफ, कभी भक्तों की तरफ चक्कर लगाता है। तो अमृत मिले बाबा के साथ साथ चक्कर लगाने का या बाबा के डायरेक्शन सेवा पर जाने का टाइम फिक्स है। हमने कहा दादी हम लोग भी जब अमृत मिले बैठते हैं तो चक्कर तो लगाते ही हैं। दादी ने कहा आप लोग बैठते हो लेकिन मेरे को जो बाबा ने अभी स्पेशल वरदान दिया है, मैं यहां बैठते ही सर्वात्माओं को इमर्ज करती हूं और मेरे सामने लोग पर छोटी छोटी आत्माएं इमर्ज हो जाती हैं और मैं उन लोगों को सकाश देती हूं और कभी चक्कर लगाने जाती हूं, कभी बाबा साथ में होता है, कभी बाबा मुझे भेजता है। टाइम मेरा फिक्स है, मैं सेवा भी कर सकती हूं, बाबा के साथ बैठती भी हूं और बाबा के बिना तो मैं रह नहीं सकती, भले गर्भ में भी हूं लेकिन अमृत वेले बाबा मुझे अपने वतन में इमर्ज करता और मैं अनुभव करती हूं। उसके बाद बाबा मुझे लोगों की नदी पर ले चला। दादी दादी जानकी साथ में थी और मैं सामने बैठी, बाबा विष्णु के समान लेटा था। हमने कहा बाबा हम सबका एक प्रश्न है, दादी अभी तो गर्भ में है लेकिन जब जन्म ले लेगी तो क्या सेवा करेगी? बाबा ने कहा अभी से दादी की सेवा शुरू है। हमने कहा कैसे शुरू है? बाबा ने कहा अभी आप सारे विश्व के अंदर रिजल्ट में ये तो देख रही हो, सभी समझते हैं, साइंसदान भी दिल से कष्ट हो गए कि हम कुछ नहीं कर सकते, आत्माएं अंदर से समझती हैं हमने इतना सब किया लेकिन जो चाहते हैं वो तो नहीं हो रहा है। सर्व मनुष्य आत्माएं समझती हैं शांति हो शांति हो लेकिन प्रैक्टिकल में तो अशांति ही बढ़ रही है। तो अभी से दादी की सेवा से ये परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, सभी महसूस करते हैं कि कोई और शक्ति चाहिए और दिन प्रतिदिन तीन सत्ताओं के अलावा और कोई सत्ता चाहिए, उस पर सबका ध्यान जा रहा है। वो भी समझते हैं कोई पावर हमारे पास आवे तो हम प्रकृति को परिवर्तन करें। अभी प्रकृति अति में जा रही है लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये जो वायुमंडल है कि और कुछ चाहिए, जो भावनाएं हैं वो टोटल सारे विश्व में बढ़ती जा रही है। तो दादी सूक्ष्म सेवा से समय को जैसे समीप ला रही। मैंने कहा बाबा अभी दादी जन्म ले लेगी फिर क्या होगा? तो बाबा ने एक बहुत अच्छा राज सुनाया। दादी को मुस्कराई रही थी, दादी जैसे कहती थी बाबा आप बड़े होशियार हैं। बाबा ने कहा इनका जो पिताजी है ना, जहां जन्म लेगी वो बहुत भक्त भी अच्छा है, साहूकार भी है लेकिन वो कोई मिनिस्टर व कोई मिलिट्री का बड़ा नहीं है, फिर भी उसकी विशेषता है जो उसको सभी इतना रिगार्ड देते हैं। जैसे राय बहादुर होता है कि उनकी राय बड़ी अच्छी है तो जो भी बड़े बड़े हैं उनका कनेक्शन दादी के पिता से दोस्ती का है, वो कोई पोस्ट पर तो नहीं है लेकिन जैसे कोई सबका दोस्त बन जाता है वो ऐसा ही मिलनसार है, उसकी बात सबको जच जाती है कि वो ठीक बोलते हैं, ऐसे उसके पहले से ही संस्कार है। तो दादी जन्म भले लेगी लेकिन ज्ञान के आधार से दादी में जो टचिंग और कैचिंग पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है और पिताजी के संस्कार भी ऐसे हैं, उसके मिलनसार के स्वभाव के कारण वह भी प्रसिद्ध है। इसी कारण दादी बचपन से ही अपने पिताजी के साथ, वो भी 1.5-2 साल में ही दादी अपना रूप प्रकट करती रहेगी। दादी की राय और पिताजी की राय को सब बड़े बड़े मानेंगे, बलपूर देश में भी होंगे, लेकिन ये ऐसे प्रसिद्ध हो जाएंगे जैसे इनकी राय नंबर वन। ऐसे दादी सेवा करेगी। मैंने कहा बाबा, और जो सभी एडवांस फैक्ट्री है उनका क्या पार्ट है? दादी का ही ये पार्ट है या और कोई का भी है? बाबा ने कहा ये तो पीछे मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन जो भी एडवांस पार्टी वाले हैं उन्हों का किसी न किसी नाते से, फ्रेंडशिप के नाते से, दूर के संबंध के नाते से, समय प्रति समय कोई कोई मौके पर बिना ब्रह्मा कुमार तुम्हारी के परिचय से जैसे दिल के समीप है, तो जब भी एडवांस पार्टी वाले संबंध के नाते से कोई फंक्शन में मिलते हैं तो उन्हें फीलिंग आती है जैसे हम एक दो के बहुत समीप। क्या ऐसे होता है जैसे हमारे भाई बहन, उन्हों को ऐसी फीलिंग आती जैसे सभी एक दो के विचारों से, मिलन से बहुत नजदीक। अभी दादी जाएगी तो दादी भी उन्हों से मिलेगी। बाबा ने कहा एडवांस पार्टी वालों की एक छोटी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में विशेष 8 हैं, उनकी एक कमेटी है, वो वतन में कभी कभी मर्ज होती, उन्होंने मैं शक्ति भी भरता हूं, डायरेक्शन भी देता हूं कि कैसे कनेक्शन से आप सेवा कर सकते हैं। फिर मैंने कहा दादी, बाबा ने तो अपना सब सुनाया, लेकिन ये आप क्या समझती हो? तो दादी ने कहा मैं तो समझती ही नहीं हूं कि मैं कोई मधुबन से गई हूं, मैं तो उस मधुबन में आती रहती हूं, रोज मधुबन में सबसे मिलती हूं। हमने कहा दादी आप साकार में तो नहीं हो ना? तो दादी ने कहा बाबा ने अभी सेवा को भेजा है ना, सभी सेंटर पर भी अनुभव करते हैं कि दादी गई नहीं है, सबको लगता है कि दादी हमारे साथ मिली। फिर मैंने कहा दादी आपकी कोई हम सबके प्रति आशा है? तो दादी ने कहा मेरी यही आशा है कि बाबा जो चाहता है कि मेरा एक ही तो बच्चा ऐसी चमक में आवे जो उनके नैनों से, मस्तक से ऐसे दिखाई दे जैसे वो खुद नहीं है, लेकिन बाबा ही इन्हों में समय हो, मस्तक से भी बाबा की फीलिंग आवे, नैनों से भी बाबा ही हो, कर्म से बोल से ऐसे लगे जैसे बाबा की बोलो और बच्चे बोल रहे, बाबा की जो स्मृति है वो बच्चों की। तो कर्म द्वारा चाहे चेहरे चलन द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करें, यही मेरी आज एक आश है। अभी दूसरी फालतू बातों में व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ टाइम गंवाने से, व्यर्थ कर्म करने से अभी सब किनारे कर। तो अभी मैं चाहती हूँ हर एक के चलन से, कर्म से बाबा बाबा ही दिखाई दे, तो वाइब्रेशन ऐसे आ रहे हैं कि उनको सिखलाने वाला जैसे इनमें समाया हुआ है। बाबे बाबा की आस के सितारे तो सब हैं, मधुबन की ये मेरी भुजाएं हैं, तो मैं सबसे यही चाहती हूँ कि एक एक से बाबा प्रत्यक्ष दिखाई दे, ये मेरी आशा है। और मैं इसका इंतजार कर रही हूं कि कब वो दिन आएगा जो सबके मुख से निकलेगा कि भगवान आ गए। हर एक की चरण से चेहरे से यही सिद्धि हो कि भगवान आ गए और भगवान से मुझे वर्षा लेना है। दादी दादी ने क्या सिद्ध कर दिया कि भगवान बाप सर्वव्यापी प्रसिद्ध होने वाले हैं, सबके चेहरे से दिखाई देगा, सबके नयन से दिखाई देगा, सबकी वाणी से दिखाई देगा, तो बाबा एक व्यापी रह जाएगा या सर्वव्यापी हो जाएगा। अरे फिर दादी ने कहा कि मेरे पास सबकी यादें पहुंचती है, मैं सबकी आवाज सुनती हूँ, रिस्पॉन्ड भी देती हूँ, हम तो सब मिलकर के बाबा के साथ घर का दरवाजा खोलेंगे, सबको मुक्ति धाम में भेजेंगे, हम भी मुक्ति धाम में रहकर फिर बाबा के साथ राज करेंगे, हम सब बाबा के एक दो के साथ ही हैं, जन्म जन्म साथ रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि सबको मेरी तरफ से वरदान देना, विधाता और दाता बनो, जिससे भी सारा दिन मिलते हो, चाहे अपने साथियों से मिलते हो, किसी से भी मिलते हो, तो कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देना। संगम युग हमारा हर दिन उत्सव है, उत्साह भरा है, तो जो भी आपके साथ इस संबंध में आते हैं वो आपसे कुछ न कुछ वाइब्रेशन लेकर जा रहे हैं, आपके मुस्कराते हुए चेहरे से, नैनों से बाबा की वाइब्रेशन ले जाए, कोई आपका गुण ले जाए, आपके कनेक्शन से जो भी आ रहे हैं वो खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेकर जाए। ऐसे अभ्यास करेंगे तो बाप समान जल्दी से जल्दी बन जाए। तो बाबा ने दादियों को, मुन्नी को, मोहिनी को, सबको याद किया। दादी ने भी कहा मैं समझती हूँ जो साथ रहे हैं, जिन्होंने इतनी सेवा की है, उन्हें पल पल याद आता हूँ, सबने बहुत प्यार से सेवा की है, तो जो सेवादारी साथ ही रहे हैं, जो भी कनेक्शन में रहे हैं, उनकी हमारी तरफ से बहुत बहुत याद है। बाबा ने कहा सबको कहना कि बाबा ने आप एक एक का नाम और विशेषता देखते हुए याद किया। विधाता जी के द्वारा एक और संदेश है, नौ ग्यारह 2007। अभी हम सभी दीपरानियां दीपराज के साथ दिवाली मनाते हैं, तो संगम की इस दिवाली की सबको बहुत बहुत बधाई है। आज अमृत वेले हमने भी बाप दादा को दीपावली की मुबारक दी और हमने देखा कि अमृत वेले ही दादी बाबा के साथ गद्दी पर बैठी थी और बाबा ने उनको दीपमाला की मुबारक दी, लेकिन मुबारक के साथ साथ दादी के हाथ में और बाबा के हाथ में एक माला थी, एक एक माला थी, लेकिन वो माला बड़ी विचित्र थी, जैसे बहुत चमकीला एक गोल गोल पत्थर था, उसके अंदर दीपक की निशानी थी और उस दीपक में तीन प्रकार के थे, एक थे बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, उनकी ज्योति बहुत अच्छी एकाग्र होकर जल रही थी, और दूसरे थे उम्मीदवार, उम्मीदवार दीपक उनकी ज्योति अच्छी जल रही थी लेकिन बीच बीच में थोड़ी हिल रही थी, और तीसरे थे पुरुषार्थ दीपक, उनकी ज्योति कभी ज्यादा हिल रही थी कभी कम हिल रही थी, ये दीपक चमकीले पत्थर के अंदर चमक रहे थे, जैसे हीरे की माला होती है इस रीति से वो दीपकों की माला थी, एक बाबा के हाथ में थी एक दादी के हाथ में, तो तो हम जब पहुंची तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा बाबा मैं आज अकेले नहीं आई, मैं तो सभी की याद क्या लेकर के आई। तो बाबा ने कहा तभी तो मैंने ये माला दिखाई, ये सभी की याद प्यारे की माला है, मैं दादी को दे रहा हूँ। फिर दादा दादी ने बाबा को माला पहनाई, बाबा ने दादी को माला पहनाई। बाबा ने कहा देखो तीनों प्रकार के दीपकों की याद प्यार बाबा के पास पहुंची। बाबा ने तीनों प्रकार के बच्चों को याद प्यार दिया, सभी बच्चों का पदम पदम गुण याद किया। फिर मैंने दादी को कहा आज आपका भट्ट जी तो हम वाणी मनाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक माला पहनाती हूँ। तो दादी ने कहा तुम्हारे हाथ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने ऐसे हाथों की माला दादी को पहनाई। दादी ने कहा कि बाबा की जो हर बच्चे में शुभ भावना है, और बाबा समझते हैं कि ये जो मेरे सरेंडर बच्चे हैं, सरेंडर का आती है सब स्वाहा कर दो, आप सबके पास और है ही क्या जो बाबा को देंगे। इसलिए जो पुरानी चीजें हैं, संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, जो भी है तो सब कुछ है समर्पण कर दो। आज बाबा ये चाहते हैं कि जो पुरुषार्थ के दीपक हैं, उम्मीदवार दीपक हैं, उनके बजाय आप सफलता के दीपक बन जाओ। यही मेरी आशा है, यही आशा के दीप आज सभी जरूर ले। फिर बाबा ने कहा कि जैसे आप कोई पूर्णव बनाते हो तो उसकी डेट फिक्स करते हो, डेट के अनुसार कार्य चलता है। तो आज के दिन दादी और बाबा एडवांस पार्टी के महारथी बच्चे जो गए हैं वो मिलकर के यही संदेश दे रहे हैं कि हरेक अपने पुरुषार्थ और हिम्मत के हिसाब से आज अपना नया चौपड़ा खोलो और ये वायदा करो कि पुराना खत्म कर नया खाता खोले और स्वयं को संपूर्ण बना ले। वो डेट मेरी कौन सी होगी जिसमें हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार पुरुषार्थ में संपन्न हो। तो हरेक अपने अंदर में सोचे इतने समय में तो हम जरूर संपन्न बनकर के बाबा के सामने आएंगे, कि चौपड़ा जरूर हो, संपन्न बनने की डेट फिक्स करो और उसी अनुसार अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते रहो। तो मैं आप सबका याद प्यार देते हुए वापस आए। अच्छा